ಅಂಜನಶ್ಲಾಖ್ಯ ಚಕ್ಷುರನ್ ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭಿಷ್ಣು ಸ್ಥಾಪಿತಾಂಗೇನ ಭೂತಲು ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾಮಯಂ ದದಾತಿ ಸುಪ್ರಾಂತಿಕ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶುದ್ವೈತ ಕದಾಧರ ಶಿವಾಸದಿ ಗೌರವ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಪಿಛಲೆ ದೋ ಶ್ಲೋಕೋ ಮೇ ಹಮನೆ ಚರ್ಚಾ ಕೀ ಥಿ ಕಿ ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸ ಸಂಗಸ್ತೇಷು ಉಪಜಾಯತೆ ಸಂಗಾ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮಾನ್ ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋ ಬಿಜಾಯತೆ. ವಿಷಯ ಕಾ ಧ್ಯಾನ್ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಸಂಗ ಹೋನೆ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ವೋ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹೈ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಪ್ ಉಸ್ಕಾ ಧ್ಯಾನ್ ಕರ್ತೆ ರಹತೆ ಹೋ ತೋ ಉಸ್ಕಾ ಸಂಗ ಹೋನೆ ಲಗ್ತಾ ಹೈ. ಜೈಸೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪತಾ ಹೈ, ದೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ನದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ ರಹೆ ಥೆ ಔರ್ ಯೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕಾ ಸೀಸನ್ ಥಾ ಔರ್ ಬಾಢ್ ಆ ಗಯಿ ಥಿ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಪಾನಿ ಥಾ ಔರ್ ಕೋಯಿ ನೌಕಾ ಚಲಾನೆ ವಾಲಾ ನಹೀ ಥಾ, ಶಾಮ್ ಹೋ ಗಯಿ ಥಿ, ಅಂಧೇರಾ ಹೋನೆ ಆಯಾ ಥಾ ಔರ್ ಏಕ ವ್ಯೂ ಥಿ ವಹಾಂ ಪರ್ ಏಕ ಜವಾನ್ ಲಡ್ಕಿ ಉಸ್ಕೋ ಘರ್ ಜಾನಾ ಥಾ ಔರ್ ಉಸ್ಕೋ ನದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಿ ಥಿ. ಲೇಕಿನ್ ಯೆ ದೋನೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವಹಾಂ ಪರ್ ಥೆ ಅಕೇಲೆ ತೋ ವೋ ಬೋಲೆ ಹಮ್ ವೋ ಭಿ ಸೋಚ ರಹೆ ಥೆ ಕೈಸೆ ಕರೆ ಕೈಸೆ ಕರೆ. ಲಡ್ಕಿ ನೇ ದೋನೋ ನೇ ದೇಖಾ ಕಿ ಏಕ ಲಡ್ಕಿ ಹೈ ವೋ ಜಾನಾ ಚಾಹತಿ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಅಭಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಸೋಚ ರಹೆ ತೋ ಯೆ ಕ್ಯಾ ಕರೇಗಿ. ತೋ ಆಪಸ್ ಮೇ ಯೆ ಲೋಗ್ ಸೋಚ ರಹೆ ಥೆ, ದೋನೋ ನೇ ತಯ ಕ್ಯಾ ಕಿ ಅಪ್ನೆ ಯಹಾಂ ಸೆ ತೈರ್ ಕರ್ ಚಲೇ ಜಾಯೆಂಗೆ. ಲೇಕಿನ್ ಲಡ್ಕಿ ಕೇವಲ ಕೈಸೆ ಜಾಯೆಗಿ. ತೋ ಫಿರ್ ಬಾದ್ ಮೇ ವೋ ಲಡ್ಕಿ ನೇ ಪೂಛಾ ಕಿ ಕ್ಯಾ ಆಪ್ ಮೇರಿ ಸಹಾಯತಾ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೋ. ತೋ ಪಹಲೆ ತೋ ಬೋಲೆ ನಾ ನಾ ಹಮ ಲೋಗ್ ನೀ ಕರೇ, ಹಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಹೈ, ಹಮ ಲೋಗ್ ನೀ ಕರೇಂಗೆ, ಅಬ ಕಿಸಿ ಔರ್ ಸೆ ಸಹಾಯತಾ ಮಾಂಗ್ ಲೋ. ಲೇಕಿನ್ ಬಾದ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ, ಏಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಜೊ ಥಾ ಉಸ್ನೆ ಸೋಚಾ ಕಿ ಯೆ ತೋ ಉಲ್ಟಾ ಔರ್ ಪಾಪ್ ಕಾ ಕಾರ್ಯ ಹೋಗಾ ಕಿ ಕಿಸಿ ಜವಾನ್ ಲಡ್ಕಿ ಕೋ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಛೋಡ್ ದಿಯಾ ಜಾಯೆ ಔರ್ ಹಮ ಲೋಗ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಬನ್ ಕರ್ಕೆ ಚಲೇ ಜಾಯೆ ತೋ ಯೆ ತೋ ಔರ್ ಭಿ ಪಾಪ್ ಕಾ ಕಾರ್ಯ ಹೋಗಾ. ತೋ ದೋನೋ ನೇ ಮನಾ ಕಿಯಾ, ಲೇಕಿನ್ ಏಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಥಾ ಉಸ್ನೆ ಬೋಲಾ ಠೀಕ್ ಹೈ, ಮೈಂ ಆಪ್ಕಿ ಸಹಾಯತಾ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೂಂ. ತೋ ಬೋಲೆ ಕೈಸೆ, ಬೋಲೆ ಹಮ ಆಪ್ಕೋ ಪೀಠ ಪರ್ ಬಿಠಾ ದೇಂಗೆ ಔರ್ ಫಿರ್ ಆಪ್ಕೋ ತಯಾರ್ ಕರ್ಕೆ ಹಮ ಸಾಮ್ನೆ ಚಲೇ ಜಾಯೆಂಗೆ. ಔರ್ ದೂಸರಾ ವಾಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಥಾ, ಕ್ಯಾ ತುಮ್ ಇಸ್ ಲಡ್ಕಿ ಕೋ ಅಪ್ನೆ ಪೀಠ ಪರ್ ಬಿಠಾಓಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಕೋ ತೋ ಸ್ಪರ್ಶ ಕರ್ನಾ ಮನಾ ಹೈ. ಹಾಂ ಲೇಕಿನ್ ಅಗರ್ ಮೈ ಇನ್ಕೋ ಸಹಾಯತಾ ನೀ ಕರುಂಗಾ ತೋ ಯೆ ತೋ ಐಸೆ ಹಿ ಮರ್ ಜಾಯೆಗಿ. ತೋ ತೋ ಆಪಸ್ ಮೇ ಅಂದನ್ ಹೋ ಗಯಿ, ಲೇಕಿನ್ ಕುಛ್ ನೀ ಬೋಲೆ, ಲಡ್ಕಿ ಕೋ ತೋ ಪಹುಂಚಾ ದಿಯಾ ಸಹಿ ಠಿಕಾನೆ ಪರ್. ಔರ್ ಫಿರ್ ದೂಸರೆ ದಿನ ಸುಬಹ ಗುರು ಕೋ ಕಂಪ್ಲೇನ್ ಕಿಯಾ, ಗುರು ಕೋ ಕಹಾ ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಜಾನ್ತೆ ಹೋ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಇಸ್ನೆ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ. ಬೋಲೆ ಪೂರಾ ಆಧಾ ಘಂಟಾ ಸ್ವಿಮಿಂಗ್ ಕಿಯಾ ಉಸ್ನೆ, ಲಡ್ಕಿ ಕೋ ಬಚಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಪ್ನೆ ಕಂಧೆ ಪೆ ಬಿಠಾ ಕರ್ಕೆ ಇಧರ್ ಲೆಕೆ ಆಯಾ. ತೋ ಉಸ್ನೆ ಗುರು ನೇ ಕಹಾ, ಬೋಲೆ ಉಸ್ನೆ ತೋ ಆಧಾ ಘಂಟಾ ಕಂಧೆ ಪೆ ರಖಾ ಥಾ, ತುಮ್ನೆ ಪೂರಿ ರಾತ್ ಅಪ್ನೆ ಮಸ್ತಕ್ ಮೇ ರಖಾ. So he is better than you. तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप संग करते रहोगे विषयों का, चिंतन करते रहोगे, तो वास्तव में आप उसका संग करना शुरू कर दोगे. और जैसे उसका संग शुरू हो जाता है फिर आपको इच्छा प्रस्तुत होती है, इच्छा प्रकट हो जाती है. और अधिकतर केस में इच्छा पूरी नहीं होती, ये आपको सच बता रहा हूं, कड़वा सच. कैसे कड़वा सच है? क्योंकि आप खुद ही चेक कर लो कि आपकी इच्छाओं के लिस्ट के सामने इच्छाएं पूरी होने वाली लिस्ट कितनी है. अगर आप रेशियो भी चेक करोगे तो कितने लेस परसेंटेज है. 100 इच्छा में से मुश्किल से 1, 2, 4, 5 इच्छा पूरी होती होगी 100 इच्छा में से, मुश्किल से. तो इस तरह से इच्छा पूर्ति होती नहीं है. और पूरी नहीं होती तो क्या होता है? कामात क्रोध हो भी जाए थे, काम से क्रोध उत्पन्न होता है. जनरली आप कोई व्यक्ति क्रोध में है, अगर आप उसको पूछोगे ना आप उसको क्यों क्रोध आया, तो मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ इसलिए क्रोध आया, मैं जो चाहता था वो नहीं हुआ. और अधिकतर केस में ऐसा ही होता है कि आप जो चाहते हो वो नहीं होता है. तो क्रोध से तो आप जानते हो क्या क्या हो जाता है. क्रोधा दौध सम्मोहा स्मृति विभ्रम, क्रोध से मोह हो जाता है, मोह से स्मृति चली जाती है, वो समझ नहीं पाता कि किससे बात कर रहा है, किस जगह पे बात कर रहा है, भगवान के विग्रह के सामने है या नहीं है, भगवान की रसोई बन रही है कि क्या हो रहा है, या फिर आप मैं हरिराम दीक्षित हूँ, ब्राह्मण दीक्षित, मेरी कुछ जिम्मेदारी है, या फिर मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का पत्नी हूँ, ये सब कुछ भूल जाता है वो व्यक्ति। स्मृति विभ्रमा, स्मृति चली जाती है, और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति जैसे ही चली जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, और बुद्धि नाशात बुद्धि का नाश हो गया। बुद्धि का काम क्या है, अच्छा बुरा क्या है, उसका पता पड़ता है, और वो भी चला जाता है तो प्रणश्यति, उसका विनाश हो जाता है। तो इस तरह की श्रृंखला में वो व्यक्ति फंस जाता है जिसका बुद्धि स्थिर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर स्थित प्रज्ञ जो होता है वो इस तरह से बद्ध नहीं जाता, इसमें बंधता नहीं है इसके अंदर। तो जो इंद्रियों के माध्यम से जो प्रभावित नहीं होता, ऐसे व्यक्ति के लक्षणों के विषय में आगे चर्चा हो रही है, वही स्थित प्रज्ञ की बात हो रही है आगे। यू वॉन्ट टू से समथिंग? इच्छा से मुक्त तो असंभव है, कोई भी व्यक्ति इच्छाओं से तो मुक्त नहीं हो सकता। जैसे हमने पहले एक चर्चा किया था अम्बरीश महाराज वाला, एक श्लोक था अम्बरीश महाराज का, कामम तु दास्ये न तु काम कामेया। अम्बरीश महाराज क्या करते थे, इच्छाओं को दिशा देते थे। अब सब्जेक्ट बदलना पड़ता है, इच्छा तो नहीं जाएगी, लेकिन जिस इच्छा को अब कामम तो दास्य भगवान के चरणों में उसको अर्पण करना है, न तो काम काम है, अपनी निजी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए नहीं, इच्छाओं को भगवान की संतुष्टि के लिए प्रयोग किया जाए। इच्छा तो बंद हो ही नहीं सकती। उसमें भी काम की संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उस बिहेवियर को, आपकी अपेक्षा नहीं थी कि वो ऐसा कार्य करेगा, तो वो इच्छा ही हो गई ना, अपेक्षा इच्छा ही है। तो मैं ऐसा चाहता नहीं था कि वो ऐसा व्यक्ति ऐसा करेगा, ऐसा मैं सोचा भी नहीं था, मिस आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस यू विल डू दिस, लेकिन वो ऐसा करने लगता है बिहेवियर के कारण, या आपको किसी ने गाली दे दिया, या आपका किसी आपने आपकी कोई वस्तु तोड़ दी, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते ऐसा वो करेगा। आपकी इच्छा ऐसी है कि वो एकदम संत प्रकृति का आदमी हो और हमेशा मीठे मीठे शब्दों में बात करे, लेकिन होता नहीं है ना ऐसा। दैट्स व्हाई इट्स ओके। मोर क्वेश्चंस?
यस। इसमें फालतू वैराग्य वाला,
फालतू वैराग्य क्या,
वैराग्य का उसमें क्या बोला है? मैंने अभी रियलाइज भी किया कि हम एक टेंपल में गए थे, तो इसकोन में वो लोग बोल रहे थे कि आपकी ब्रह्मचारी तो माता दीपक थे, उसी से आपके कीर्तन करते हैं, वहाँ पूजा करने जाते हैं, हमारे तो ब्रह्मचारी वहाँ से निकलते ही नहीं, उनका अलग भवन है, वो अलग रहते हैं। तो उस टाइम मैंने बोला है कि हमारा जो है ना स्मरणों जो माला करता है उसे स्ट्रांग होता है, लेकिन इसमें पढ़ने में आता है कि वो ज्यादा सक्षम होता है जो भक्ति स्मरणों में रहता है और रहता है। उसमें दूसरा लिखा है कि निवेद अर्पण करना, वो लोग प्रसाद खाते नहीं है, कि भगवान को अच्छी चीज अर्पण नहीं करनी, खाने भी नहीं, और हमारे में क्या है, भगवान को अर्पण करना है, खाना है, वो एकदम।
यस, सो भले चाहे वो इस तरह से ये आदेश देते हैं, लेकिन उन लोग को भक्ति योग का महिमा नहीं पता कि भक्ति योग के माध्यम से अगर आधे गुरु के आदेश का पालन करने वाला भक्त होता है, उसकी रक्षा तो गुरु करते हैं और उसको कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हो, वो लोग जो उस प्रकार के लोग होते हैं कि जो शुष्क वैरागी या केवल दिखावे के वैरागी होते हैं, उसके विषय में आएगा अभी ये पूरे चैप्टर में, ये आने वाले 5 सप्ताह तो उसके ही है। और कोई प्रश्न कुछ पूछ रहे थे? ओके, सो नो क्वेश्चन, सो यू कैन गो फर्दर। टेक्स्ट नंबर 64।
किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त केवल हम अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है।
हाँ, यह उसके विपरीत है कि जो व्यक्ति सब प्रकार की आसक्ति, राग और द्वेष, राग का अर्थ होता है आसक्ति, अनुराग, अटैचमेंट, आसक्ति और एवर्जन का अर्थ होता है द्वेष, राग और द्वेष से प्रभावित हुए बिना जो नियामिक सिद्धांतों, जो नियम, जो हमारे सिद्धांत है उसका फॉलो करके इंद्रियों को वश में लाता है, वो इसमें फंसता नहीं है, अर्थात भगवान की कृपा प्राप्त करता है। और ये इसलिए हो सकता है क्योंकि टेक्स्ट नंबर 59 उसके पास होता है। व्हाट इज द टेक्स्ट नंबर 59? हायर टेस्ट वाला रस उसके पास होता है, इसलिए उसको कोई प्रभाव नहीं आता इस चीजों का, राग और द्वेष का। सुनने में तो ऐसा लग रहा है ना कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन आप प्रभुपाद के जीवन को देखोगे, भक्तिवान ठाकुर के जीवन को देखोगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जीवन को देखोगे, तो ये लोग उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि हायर टेस्ट कैसा होता है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था विश्वामित्र मुनि और हरिदास ठाकुर का, विश्वामित्र मुनि मेनका से आकर्षित हो गए और हरिदास ठाकुर साक्षात माया देवी भी प्रकट आए, लेकिन उनको इससे कोई फर्क नहीं होगा। तो ये भगवान की विशेष कृपा उन लोग को प्राप्त होती है, इसके कारण ये प्रभाव आता है, भगवान की विशेष कृपा। श्रील प्रभुपाद माताओं को साड़ी पहनना सिखाए थे, वो लोग क्या करते थे कि जो लड़कियां जो थी उधर प्रभुपाद के सामने, उन तो उनकी बेटी की उम्र की थी, वो सब जींस वींस लगा करके खड़े होते थे, रोज आते थे ऐसे। प्रभुपाद ने कहा कि अब साड़ी भी सीखो कैसे पहना था, तो प्रभुपाद अपने धोती के ऊपर साड़ी घुमाते थे और खुद साड़ी ऐसे रोल करके फिर दिखा देते, पहन करके देखो ऐसे साड़ी पहनते, अभी तुम पहनो, तुम भी जींस के ऊपर ही साड़ी पहनो, तो जींस के ऊपर पूरा साड़ी ऐसे रोल करते थे और फिर वो साड़ी पहन, इस तरह से प्रभुपाद ने साड़ी पहनना सिखाया। तो फर्स्ट लेडी जो थी उनको इस तरह से सिखाया, फिर तो एक को आ गया, फिर प्रभुपाद ने कहा अब तुम सबको सिखा दो, माय कंडीज एवरीवन। बट द पॉइंट इज दैट प्रभुपाद ऐसी किसी चीज से आकर्षित, क्यों? हायर टेस्ट, या उच्च प्रकार के रस के कारण ये परिणाम प्राप्त होता है हायर टेस्ट का। रामानंद रॉय वो नृत्यांगनाओं को अपने हाथ से उनका श्रृंगार करते थे, रामानंद रॉय अपने हाथ से उनका श्रृंगार, श्रृंगार ही नहीं, उनका स्नान आदि, मसाज आदि सब कुछ किया था भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक भक्त था, वो उसको मन में शंका हो गई कि ये तो कैसा हो गया, रामानंद रॉय जैसा महान भक्त ऐसा निंदनीय कार्य करेगा, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जानबूझ करके ये बताया इस प्रकार से, और चैतन्य महाप्रभु उस ऐसे ही भक्त को भेजा कि जो कमजोर हो, तो फिर वो देखा, वो प्रभावित हो गया, फिर कहा कि अब तुम देखो रामानंद राय का चमत्कार। और फिर रामानंद राय का असली स्वरूप उनको पता पड़ा, तब वो समझ पाए ओ इनके हृदय में माया या भोग नाम का कुछ भी नहीं है, एक नॉट अ सिंगल ट्रेस ऑफ माया, कुछ भी नहीं है उनके हृदय में, दिस इज बिकॉज हायर टेस्ट। तो उनको हायर टेस्ट प्राप्त होता है, इसलिए वो संतुष्ट रहते हैं, हमेशा संतुष्ट रहते हैं, और भक्त लोग भी संतुष्ट रहते हैं क्योंकि उनको हायर टेस्ट, और जिनको हायर टेस्ट कम मिला है या परसेंटेज कम है या फिर नहीं मिला है, वो भक्त के मार्ग में जुड़ भी जाते हैं, सोलह माला भी करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन जो है वो असंतुष्ट रहता है, वो हमेशा उसको संतोष नहीं आता, ये कुछ भी देता है वो भी, उसको और चाहिए, उसको और चाहिए, उसको भोग करना, वो कृष्ण भक्ति उसको इनसफिशियंट लगता है, कृष्ण भक्ति जो है वो पर्याप्त नहीं है, वो उसको ऐसा लगता है कृष्ण भक्ति। तो इस तरह से एक बार प्रभुपाद के गुरु भाई भक्तिदान सरस्वती महाराज ने उनको भेजा था लंदन में, प्रचार करने के लिए। अब प्रचार करने गए लंदन और यूरोप में, तो प्रचार कर रहे थे, तो प्रचार के समय एक फैमिली उनके पास आया और उन्होंने कहा कि अगर मुझे आपसे दीक्षा लेना हो तो मुझे क्या करना चाहिए। दिस इज बिफोर इस्कॉन। तो क्या कहा उन्होंने, बहुत आसान है, तुम्हें चार नियम का पालन करना पड़ेगा। तो बोले चार नियम क्या है, बोले नो मेडिटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग एंड नो इंटॉक्सिकेशन। जैसे ये चार चीज सुना सामने वाला बोला इम्पॉसिबल, तुरंत बोल पाया। बोले ये चार चीज अगर होती नहीं है तो फिर जीवन में बचा क्या। अगर मिस आप सोचो किस प्रकार के लोग हैं, ये चार चीज अगर नहीं निकल जाते लाइफ में से तो सोचते हैं कि पूरा जीवन खाली हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं लाइफ के अंदर। दिस इज द प्रॉब्लम विथ पीपल हु आर ग्रॉसली अट्रैक्टेड टू मटेरियल एंजॉयमेंट। यस आप कुछ कह रहे थे। ब्लिस, एवरीवन वांट्स ब्लिस, सबको आनंद, आनंद चाहते सब लोग, आनंद के लिए हर एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। तो आनंद जो जो सही रियल यू नो स्टे हाई फॉर एवर, यू नो प्रभुपाद यूज्ड टू से हाई फॉर एवर। क्योंकि अगर आप LSD लेते हो, नशा करते हो, तो आप कुछ समय के लिए आसमान में चले जाते हो, है ना। अगर किसी ने शराब पिया है, नशा किया है, तो कुछ समय के लिए आसमान में चला गया, बहुत सबसे खुशी। लेकिन जैसे उसका नशा उतर जाता है, वापिस वही दुखमय जीवन के अंदर गिर जाता है। तो प्रभुपाद ने एक बार एक लेक्चर दिया था, स्टे हाई फॉर एवर, क्योंकि आप हमेशा ऊपर ही रहोगे, फिर नीचे कभी नहीं जाओगे। आपके आनंद की जो सीमा है वो कभी कम नहीं होगी, हमेशा रहेगी। सो दैट टू मेन थिंग्स, वन इज पीस ऑफ माइंड एंड ब्लिसफुलनेस, ये दो चीज, एंड द लव, थ्री थिंग्स एक्चुअली ऑल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। और प्रेम, आनंद, प्रेम और शांति, ये चीज ऐसी है कि मटेरियल वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती, आपको आध्यात्मिक जगत के पास जाना ही पड़ता है। और जो मिलता है वो डुप्लीकेट होता है, आर्टिफिशियल आता है, जो आपको हमेशा नहीं रहता। लग जाए तो व्यासदेव के मन में भी ऐसा हुआ था। व्यासदेव का मन भी संतुष्ट नहीं था। क्यों संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ये टेक्स्ट नंबर 5 में इसकी चर्चा हम करेंगे। टेक्स्ट नंबर 65 उसकी उसकी बात करो।
इस प्रकार से कृष्ण भगवान उनके उस व्यक्ति के लिए संसार के जीवन का पुनर्ष हो जाते हैं, और जैसे ही कृष्ण चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है।
अब सुन, वेल एस्टैब्लिश, शीघ्र ही स्थित हो जाती है उनकी बुद्धि। कैसे हो जाती है, क्योंकि तीन प्रकार के जो ताप है उससे वो मुक्त हो गया। तीन प्रकार के ताप कौन से हैं, अधिदैविक, अध्यात्मिक, देवताओं से मिलने वाले कष्ट, फिर दूसरे जीवात्माओं से मिलने वाले कष्ट, और हमारे अपने मन और शरीर से मिलने वाले कष्ट। ये तीन ताप बोलते हैं इसको, त्रिविध ताप, तीन प्रकार के ताप। उसने उस वो परेशान नहीं होता, वो उसके अंदर नहीं रहता, थ्री फोल्ड मिजरीज मटेरियल एग्जिस्टेंस का, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में संतुष्ट होता है। कृष्ण भावनामृत में अगर आप संतोष का अनुभव नहीं करते तो समझ लेना चाहिए कि हमारी कृष्ण भावनामृत में कहीं प्रॉब्लम है। अगर आप संतोष अनुभव नहीं कर रहे हो, आप अगर मन आपका विचलित रहता है, तो समझ लेना कि आपकी कृष्ण भावनामृत में कहीं प्रॉब्लम है, समथिंग गोइंग रॉन्ग। इसलिए आप परेशान हो, इसलिए आप चिंतित हो, इसलिए आप भयभीत हो, इसलिए आप असंतुष्ट हो। वी मस्ट अंडरस्टैंड, क्या बोलते हैं उसको, सवई धर्मा सवई पुंसाम परो धर्मा, ये तो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान की जो अधोक्षज भगवान है उनकी भक्ति वो सभी धर्म का अंतिम सीमा है। और वो भक्ति कैसी होती है? अहितुकी अप्रतिहता, वो अहितुकी और हमेशा चलने वाली होती है। ऐसा ययात्मा, ऐसा करने वाला जो भक्त है सुप्रसिद्धति, वही वास्तव में शांति लाभ कर सकता है, अन्यथा नहीं। इसका विपरीत अशांति ही अशांति। इसका ये श्लोक का जो विपरीत होता है उसमें केवल अशांति ही अशांति। उसको यहाँ पर आत्मा सुप्रसिद्धति अर्थात हमारे आत्मा की खुशी या सुख प्राप्त नहीं होता, आत्मा हमारा असंतुष्ट रहता है। व्यासदेव के केस में ऐसा हुआ था। व्यासदेव ने क्या किया था? उन्होंने वेद, संहिता, उपनिषद, पुराण सब कुछ उन्होंने बनाया, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ एम्प्टी या खालीपन उनके हृदय में ऐसा था, खालीपन। कई बार होता है ना शिष्य को, कई बार भक्त को भी होता है कि गुरु महाराज मैं सब कुछ किया लेकिन फिर भी मैं, मुझे संतोष नहीं प्राप्त हो रहा, क्या प्राप्त, क्या प्रॉब्लम, मुझे संतोष नहीं हो रहा। फिर इसी तरह से व्यासदेव ने नारद को पूछा, तो नारद मुनि ने, उनके गुरु है और तो गुरु का काम है शिष्य को डांट भी सकते, तो गुरु ने बोल दिया नारद मुनि ने, व्यासदेव भगवान के अवतार थे, उनको बोल दिया कि तुमने बहुत बड़ा गलती किया है, व्यतिक्रम किया है। क्या व्यतिक्रम किया है? बोले तुमने वेद, उपनिषद, पुराण ये सब कुछ इस तरह से बनाया कि लोग जो है वो तीन गुणों में फंस जाते हैं, और तुमने भक्ति का महिमा बताया नहीं, इसके कारण तुम्हारी समस्या है। इतना सब लिखने के पश्चात भी अच्छे से डांटा, उनके स्वर में, लेकिन उन्होंने तुरंत ऐसे बोले निष्कर्म अभी अच्युत भाव अर्जिता न शोभते, ये शोभा नहीं देता, कैसा तुमने बना दिया, ये कॉम्प्लिकेटेड कर दिया पूरा सब कुछ, और फिर भी यू नो। और तो दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी गलती क्या है, यू डोंट इवन नो दिस व्हाट्स योर प्रॉब्लम, दैट इज इवन बैड। किसी व्यक्ति को अपनी गलती पता है और फिर वो गलती सुधारने का प्रयास करता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को अपनी गलती ही नहीं पता तो फिर डांट पड़ेगी ना गुरु की। सो दैट हैपन विद व्यासदेव, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। आई जस्ट रीड द लास्ट लाइन ऑफ हिज फिल्म, आई एम फीलिंग इनकम्प्लीट दो आई माई सेल्फ आई एम फुल्ली इक्विप्ड with everything required by the Vedas, if Srimad Bhagavat says. This may be both to perfect beings and to the infallible Lord. Sorry, this may be because I did not specifically point out the devotional service of the Lord, which is dear both to perfect beings and to the infallible Lord. यहाँ पर last line में उन्होंने कहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने भक्ति का वर्णन नहीं किया, शायद। सो इट इज गुड टू आस्क गुरु एंड उस क्लैरिफाई। सो हायर ड्रिस्ट नहीं होने पर यह अवस्था प्राप्त होती है, और जो निराकार की उपासना करने वाले हैं उनको तो कृपा ही नहीं मिलती। यहां पर क्या लिखा है? जो भगवान की शरणागत होता है उसको कृपा मिलती है, लेकिन निराकार की उपासना करने वाले को तो कृपा मिलती ही नहीं है। कहां से लाएगा कृपा? कहां से? आकाश से थोड़ी आएगी कृपा। कोई व्यक्ति होना चाहिए ना कृपा देने वाला, लेकिन व्यक्ति ही नहीं है तो कृपा कौन देगा? अब कृपा के बिना सोचो कि मेरे आपके लाइफ में अगर कृपा कहीं से आती ही नहीं होती तो क्या होता? कुछ कर पाते क्या हम? कहीं से कृपा आती नहीं, ना वैष्णव से आती, ना भक्त से आती, ना गुरु से आती, ना आचार्य से आती, ना कृष्ण से आती, ना प्रसाद से आती, ना बेटी से आती, ना धाम से आती, ना नाम से आती, तो क्या कर रहे आप? ऐसी अवस्था हो जाती है हमारी। तो ये मटेरियलिस्टिक लोग जो होते हैं, स्पेशली जो मायावादी है कि जो लोग भगवान के व्यक्ति को नहीं मानते उनको कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए भक्त जो होता है वो कृष्ण के पास जाता है, अंधकार से दूर नहीं जाता, आप समझे। ये बात आप क्लियर है ना? कई बार हमारे भक्त लोग कंफ्यूज जाते हैं इसमें। वो माया से दूर नहीं जाते भक्त लोग, वो कृष्ण के पास जाते हैं। इज दैट क्लियर? मीन्स एक अप्रोच है कि नेगेटिव अप्रोच, डोंट डू डोंट डू डोंट डू डोंट डू डोंट डू, नहीं थी नहीं थी नहीं थी, ये माइक भगवान है नहीं है, यू नो ये लैपटॉप भगवान है नहीं है, ये मोबाइल भगवान है नहीं, क्या आप भगवान हो नहीं, ये यू नो नहीं थी नहीं थी नहीं थी, इट्स नेगेटिव अप्रोच। तो फिर और भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है, लाइक दैट, दैट इज पॉजिटिव अप्रोच। तो माया से दूर होने का प्रयास मत कीजिए, कृष्ण के पास जाने का प्रयास कीजिए, तो माया अपने आप दूर जाएगी। और जो माया से दूर होने का प्रयास करता है वो भक्त नहीं होते, वो ज्ञानी होते। इसलिए आपके अगर आपके मन में कोई कोई समस्या है, समझ लो आकर्षण है माया के प्रति, तो उसको हटाने का प्रयास मत करो। प्रयास आपका होना चाहिए पॉजिटिव, क्या प्रयास होना चाहिए? कृष्ण को आपके करीब ला दो बस, तो अपने आप समस्या से। एक बार एक गुफा वो सूर्य देव के पास मूर्ति के रूप में पहुंच गई कंप्लेन लेकर के, सूर्य देव के पास एक गुफा, गुफा ने कहा तुम सब जगह प्रकाश डालते हो सब जगह, लेकिन मेरी गुफा के भीतर अंधकार ही अंधकार है, ऐसा कैसे? सूर्य देव ने कहा ऐसी बात है क्या, चलो मैं आता हूँ, दिखाओ कहाँ पर है तुम्हारी गुफा। वो गुफा के अंदर आया, दिखाओ, बोले कहाँ पर है तुम्हारी गुफा, दिखाओ अंधकार कहाँ पर है। इसी बात है, जहाँ कृष्ण है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। अर्थात जहां पर यू ब्रिंग कृष्ण इन, डोंट गो अवे फ्रॉम माया, जस्ट ब्रिंग कृष्ण। कई बार हम लोग कहते हैं, कोई बोलता है ना कि मुझे मैला ब्लैक मैजिक से परेशान हो रहा हूँ, या कोई भूत की संभावना है इत्यादि, कोई कुछ लगे थे हम, तो ऐसा नहीं कहते इसके लिए तुम ये अनुष्ठान करो वो करो, अरे ये सब में क्यों फंस रहे हो, ब्रिंग कृष्ण, कृष्ण को ले आओ, अपने आप सब भाग जाएंगे, नथिंग टू वरी लाइक दैट। सो क्या होता है अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना में संतोष का अनुभव नहीं करता है, तो या कृष्ण भावना मृत से संतोष का अनुभव नहीं करता है, उस व्यक्ति का क्या परिणाम आता है? नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक आना है।
जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर,
आई थिंक यू आर रीडिंग 60। कैसे मिलेगा उसको? सीधी सी बात है, देखो यहाँ पर क्या है कि जो कृष्ण भावना में स्थिर नहीं है, अर्थात भक्ति से जुड़े हुए उन सभी भक्तों के अतिरिक्त जो भी है मटेरियल वर्ल्ड में आप जितने भी लोग देखते हो वो सब, और जो भक्ति में जुड़ गए हैं उसमें भी कई ऐसे हैं कि जो पूर्ण रूप से भी जुड़े नहीं है भक्ति से, तो क्या होता है उनका बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती, और स्थिर बुद्धि नहीं होने के कारण उनका मन भी स्थिर नहीं रहता, मन विचलित रहता है हमेशा, कभी इधर कभी उधर। जिसका मन स्थिर नहीं होता है उसको शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? अशांति रहेगा ना वो, तो जिसका मन ही स्थिर नहीं है तो, और जिसका मन स्थिर नहीं उसको शांति नहीं मिलती, और जिसको शांति ही प्राप्त नहीं हो रही है मन की, तो सुख का तो सपना कैसे देखेगा वो, उसको सुख कैसे मिलने वाला है? अर्थात कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है कोई व्यक्ति, उसको सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अगर आपको वो दिखा रहा है तो सुख की प्राप्ति हो रही है तो ढोंग है, वास्तव में कोई सुख ही नहीं, नो बडी इज जस्ट यू नो सुपरफिशियल, सब कुछ नकली आडंबर, कुछ नहीं, कोई सुखी नहीं है। आपको लगेगा नहीं महंगी महंगी गाड़ी में घूमता है, बड़े बड़े महलों में रहता है, होटलों में खाता है, और कितना फेम है, सारी चीज एकदम महंगी यूज करता. सो डज इट मीन दैट ही इज हैप्पी? क्या इसका अर्थ ये होता है कि वो सुखी है? कहीं पर कनेक्शन ही नहीं है. सुख का कनेक्शन तो इंद्रियों से है ही नहीं, आत्मा से. इंद्रियों के माध्यम से तो सुख मिलता ही नहीं है, isn't it? कैसे? क्योंकि सुख जो होता है वो आत्मा की शांति के ऊपर आधारित है, और मटेरियल वर्ल्ड में जो सुख दुख होता है वो इंद्रियों के आधार पर है. दैट्स करेक्ट. मटेरियल वर्ल्ड में जो जिसको आप सुख कहते हो वो टेम्पररी. जैसे हमने वो एग्जाम्पल दिया था ना, गर्म पानी ठंडे पानी का एग्जाम्पल, यू रिमेम्बर? ठंडी के मौसम में गर्म पानी अच्छा लगता है, तो आपको इंद्रिय जन्य है वो, बट दैट इज मटेरियल. जो अपने आप में कुछ नहीं है वो. आध्यात्मिक सुख उसी को प्राप्त होता है जिसको मन की शांति प्राप्त होती है, और मन की शांति उसको प्राप्त होती है जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, और बुद्धि उसी की स्थिर होती है कि जो कृष्ण भक्ति में जुड़ा हुआ है, अन्यथा नहीं. सो ये कृष्ण की जो आर्ग्यूमेंट है उसको दोनों का ये श्लोक और आगे पीछे वाला श्लोक, ये दो कृष्ण के विषय को प्रस्तावित करने के लिए कृष्ण इसको प्रस्तुत किए थे. अगर हमारा मन और इंद्रियां कृष्ण के से दूर हो जाता है तो फिर फॉरगेट अबाउट हैप्पीनेस, आप सुख की कामना या सुख का चिंतन भी नहीं कर सकते. सो दैट इज द डिवेटेड माइंड प्रॉब्लम. जैसे प्रभुपाद सेड, योगी एंड अदर्स ट्राइंग टू कंट्रोल द सेंसेस बाय फोर्स, इंद्रियों को लोग, योगी लोग फोर्स से या बलपूर्वक वो क्या करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं. आई शैल गो टू, वो कहते कि हम लोग हिमालय चले जाएंगे तो हमें यहाँ पर सुंदर स्त्रियों को देखना नहीं पड़ेगा. दे थिंक लाइक दिस, हिमालय में आई शैल क्लोज माई आईज, मैं अपनी आंखें बंद कर दूंगा. The Prabhupada says, you cannot control your senses. आप अपनी इंद्रियों को इस तरह से वश में नहीं ला सकते. आपको हिमालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अहमदाबाद में ही रहो, आप जहां रहते हो वहीं रहो, लेकिन अपनी इंद्रियों को, कान को लगाओ भगवत गीता सुनने के लिए, आंखों को लगाओ भगवान के विग्रहों को देखने के लिए. इस तरह से करोगे तो अपनी इंद्रियां अपने आप स्थिर हो जाएगी. तो जैसे आप प्रभु जी बता रहे थे ना, आपको कोई मिल गया था कि जो लोग कह रहे थे कि ब्रह्मचारी और माताएं वहां पर कीर्तन करते हैं साथ में, तो आप कभी फॉरेन कंट्रीज में अगर आप देखो तो वहां का जो वातावरण होता है इतना प्रदूषित वातावरण होता है रजोगुण और तमोगुण के माध्यम से, कि वहां पर भारत का कोई अगर सज्जन व्यक्ति या आप में से कोई आपके दादा या आपके बुजुर्ग किसी को ले जाओ, वो तो बोले कहाँ नरक में लेके आ गए मुझे, वो ऐसा बोलेंगे. तो कैसी जगह पर तुम लाए, यहाँ पर तो किसी को शर्म जैसा ही नहीं है, वो तो कितने इंद्रिय भोग के पीछे पड़े. बराबर हमारे जो भक्त लोग होते हैं उनको कुछ नहीं होता है. क्यों कुछ नहीं होता है? क्योंकि वो निरंतर कृष्ण भावनामृत में अपने आप को जुड़े हुए. इसलिए अगर आप अपनी सभी इंद्रियों को हमेशा लगा के रखोगे भगवान की सेवा में, तो नो प्रॉब्लम. एंड प्रॉब्लम इसको भगवान जी इस बात को एस्टैब्लिश करने के लिए एग्जांपल भी दिया. पढ़िए.
जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ली जाती है, उसी प्रकार विचरण स्त्री इंद्रियों में से कोई एक चीज पर निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की मुक्ति को कर लेती है.
ये भी स्ट्रोक इम्पोर्टेंट है कि जैसे किसी एक चीज के प्रति अगर मैं कमजोर हूं और मेरी बुद्धि स्थिर नहीं की है मैंने कृष्ण भक्ति में, तो परिणाम यह आएगा कि एक चीज बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, पूरा पूरी नौका को बहा के ले जा सकता है, पूरी नौका को. एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया में 97-98 में टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल में जो आर्टिकल्स आते हैं ना, तो उसमें हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी का इंटरव्यू छापा था. और वो जो प्रश्न प्रश्नोत्तरी थे क्वेश्चन आंसर, तो उसने प्रश्न पूछा पत्रकार ने कि तुम्हारे सन्यासी कुछ इस्कॉन के, बोले उन लोग का पतन क्यों हुआ, क्यों उनका पतन हुआ था, ऐसा प्रश्न हुआ। तो जो सन्यासी जो आंसर दे रहे थे उन्होंने कहा कि ये श्लोक बताया कि अगर किसी व्यक्ति का बुद्धि स्थिर नहीं होती है, अगर वो चाहे सन्यास तक भी पहुंच जाए लेकिन किसी के अंदर तो हम बैठे नहीं है, किसके हृदय में क्या चल रहा है, राइट। तो अगर एक इंद्रिय भी उसकी कमजोर रह जाती है तो ये पूरी संभावना है कि वो कृष्ण भक्ति को पूर्ण रूप से त्याग करके उसका पतन हो जाए, नौका पूरी डूब सकती है, पूरी संभावना है। आप समझे, हमारी जो भी इंद्रियां है उसमें से एक चीज, जैसे अगर समझ लो कि अगर मुझे बुरी आदत है दूसरों की निंदा करने की, बस बाकी मुझे सब कुछ अच्छा है यार, सब कुछ मैं सेवा करता हूँ, माला करता हूँ, ग्रंथ पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बट एक बैड हैबिट है मेरी कि मैं दूसरों की निंदा करता हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है, मुझे एक अंदर से आनंद आता है, आज कुछ किया मैंने ऐसा नहीं बोलते तो वो यू नो खाली खाली चला जाता है, दिन खाली चला जाता है। तो आपको ऐसा लगेगा ये तो छोटी सी बात है, इससे क्या होगा, लेकिन ये कभी भी बड़ा विशाल स्वरूप ले सकता है और आपको किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करवा करके हमेशा के लिए कृष्ण भक्ति से उठा करके पटक सकता है। एक इंद्रिया, बोलने की इंद्रिया थी, कोई खाने वाला, तो खाने में क्या होता है कि उसको खाने के लिए वो अपने आप को वश में कर नहीं पाता, कई बार सब कुछ कर सकता है लेकिन खाने में अटक जाता है, है ना। कई बार देखा जाता है, एक भक्त तो मुझे बता रहे थे, बोले प्रभु जी मैं तो खाने के लिए ही जीता हूँ। आई मीन आर यू सीरियस, बोले यस खाने के लिए जीता हूँ। मीन्स वो हमारा यही विचार है कि मैं खाता, मैं कहा प्रसाद मिलता, और कुछ नहीं चाहिए उसको, दैट्स फाइन, खाने के लिए जीते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जीवा की इंद्रियां आगे जाके आपका नुकसान भी कर सकती है। कैसे, अगर आप उसको वश में नहीं किया तो आप फिर कहीं कुछ ऐसी चीज भी खा लोगे कि जो भोग नहीं लगाए, या फिर आप किसी ऐसे स्थान पे खा लोगे जहां के बाद में पता पड़ेगा ओ ये तो चोर का घर था, यहाँ पर मैंने खा लिया।
प्रसाद में भी लिमिटेशन रखने का,
प्रसाद में लिमिटेशन नहीं है, प्रसाद आप जितना खाना चाहे वो खा सकते हो और जो आइटम खाना चाहो खा सकते हो, लेकिन ऑफर होना चाहिए, बस भोग लगा हुआ होना चाहिए, अनलिमिटेड नो प्रॉब्लम। प्रभुपाद ने कहा प्रसाद भी अनलिमिटेड और लोग भी अनलिमिटेड, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि आपके लिए प्रसाद है और आपके लिए प्रसाद नहीं है, ऐसा कोई नहीं। प्रभुपाद ने कहा कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि अगर सारे विश्व के लोग, सारे इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब सारे विश्व के लोग, सबको मैं फ्री में प्रसाद खिलाऊंगा, सबको, एंटायर वर्ल्ड, सबको मैं फ्री में प्रसाद खिलाऊंगा, प्रोवाइडेड कि वो लोग मेरी बात को स्वीकार कर ले। अगर वो मेरी बात को स्वीकार कर लेते हैं, जो मैं बताता हूँ वो सारी चीज को फॉलो करते हैं, तो ये मेरा दावा है कि मैं सारे संसार को फ्री में प्रसाद खिलाऊंगा। तो बस फिर जैसे इसलिए कोई भी इंद्रिया, हमने एग्जाम्पल के रूप में दिया प्रसाद की, कोई व्यक्ति का आंखों का होता है कि उसको देखने का प्रॉब्लम हो, देखता है, जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर किसी वेश्या में आ सकते थे लेकिन बाद में बहुत मेहनत करके छूट गए, उससे कृष्ण भक्ति में जुड़ गए, लेकिन एक बार फिर से आसक्त हो गए, एक बार फिर से मार्केट में, सब्जी मंडी में, सब्जी मार्केट में एक स्त्री को पीछे से देखा, चेहरा भी तो देखा नहीं अभी, केवल पीछे से देखा, पीछे से किसी स्त्री को देखा और मन आंखें आकर्षित हो गई, तो पीछे 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 चले गए और फिर बाद में, और कथा बाद में बताएंगे आपको, वो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ डाली। क्यों फोड़ डाली? इसलिए फोड़ डाली कि ये देखने में झंझट आ रही है तो आंखें फोड़ डाली। तो कई बार व्यक्ति किसी न किसी तरह से इंद्रियों में फंस सकता है। तो ये एग्जाम्पल बोर्ड का वेरी गुड एग्जाम्पल कृष्ण। टेक्स्ट नंबर 68। हाँ जी, ये कौन है?
कई बार देखा है कि आते हुए ज्वाइन करते हैं बिकॉज देर डिस्ट्रेस चार प्रकार के लोग होते हैं ब्रह्मा का पर्सन देर डिस्ट्रेस दी ऑल्सो फॉलो दिस कॉन्सेप्ट टू सर्टेन टाइम बट समहाउ यू नो व्हेन द डिस्ट्रेस गोज अवे दी ऑल्सो गो फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसे कई बार
डिस्ट्रेस गोज अवे बाय
उनका जो दुख होता है चला जाता है टेम्पररीली के लिए
yes.
वो आते हैं क्योंकि उनको दुख है लाइफ में तो उनको अच्छा लगता है यहाँ पे देयर इज हैप्पीनेस प्लीज पर कहीं आफ्टर सम मोमेंट द डिस्ट्रेस गोज अवे इन द ऑल्सो द काइंड ऑफ गो अवे फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस दिस इज सीन इन फ्यू प्लेसेस
यस मींस दे एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस
यस बट जैसे दुख चला जाता है वो भी चले जाते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस
That is four different kinds of people. इसमें दुखी वगैरह जो आता है सेवन चैप्टर में तो उसमें से एक ऐसा है जो दुख को नष्ट करने के लिए आता है दुख को समाप्त करने के लिए तो उसमें चर्चा आती है कि कुछ लोग का वापस जाने का चांसेस पूरा होता है समटाइम पीपल कम फॉर अर्थ या धन वो लोग धन की इसको में आएंगे तो कुछ पैसा वैसा दो पैसा कमा लेंगे सब लोग कमा दे तो अपने भी कमा लेंगे संस्था में तो ऐसा होता ही है कहीं पर भी हाथ मार सकते हो तो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे फिर अगर और कहीं जगह बिजनेस में लग जाएंगे फिर हरे कृष्ण तुम्हारी संस्था तुम्हें मुबारक सो लाइक दैट पीपल दे कम एंड दे जस्ट गो अवे पॉसिबल हाँ वो पुराने समय में ऐसा सब पूछा जाए हाँ इसकोन मुझे भी कुछ बोल इसको ना तब तक तुम अमेरिका जाओगे ना मैं कहा मुझे नहीं पता आपको कैसे पता सो ओके सो या You need to check what's going wrong. That's not his fault. That's a situational thing. ये क्या होता है कि हर एक भक्त के एक अपना एक situational decision लेना पड़ता है लेकिन अगर समझ लो कि मैं कृष्ण भक्ति भी कर रहा हूँ लेकिन मेरे मन में संतोष नहीं प्राप्त हो रहा है कृष्ण भक्ति से अभी यहाँ पर तो क्या था कि किसी व्यक्ति के कारण वो परेशान हो रहा है हो सकता है कि किसी भक्त के आचरण से भी वो परेशान हो रहा हो लेकिन वो उसको परेशान होना उचित है या नहीं है वो उसको समझना चाहिए आपने जो एग्जाम्पल लिया दैट इज सिचुएशनल है और दिस जेन्युइन है जो व्यक्ति परेशान कर रहा है बट नीड टू चेक जैसे समझ लो कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आप बता सकते हो जैसे कुछ वरिष्ठ भक्त के पास जाते हो तो आप उनको बताते हो कि ये समस्या है तो इसमें क्या उपाय है तो हमेशा कभी भी आपके मन में कोई असंतोष आए कभी किसी प्रकार का आपको दुख अनुभव होता हो अगर आप कृष्ण भावनामृत में आपको प्रश्न आ रहे हो ये आपने सुना होगा कई बार कुछ लोग ऐसा बोलते हैं बोले हमने तो मटेरियल वर्ल्ड में तो सब जगह प्रॉब्लम ही थे तो हम सब कुछ छोड़ करके कृष्ण भक्ति में जुड़े लेकिन हमें क्या पता था कि यहाँ पर भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आने वाले हैं हमें थोड़ी पता था कि यहाँ पर भी डिवोटिस के बीच में ये प्रॉब्लम आएंगे बोले अब तो प्रभु इतना परेशान हो गया इससे अच्छा तो कई बार होता है कि सब कुछ छोड़ करके वापिस जैसे थे वैसे बन जाए ऐसा क्यों आता है ऐसा विचार क्यों आता है ऐसा विचार इसलिए आता है क्योंकि हम वस्तुतः विषय को समझ नहीं पा रहे हमने एक्चुअली समझा ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए समझा ही नहीं है हम और फिर भी हम ऐसा मान के बैठ रहे हैं कि हमें सब कुछ आता है। आप क्या मानते हो, मैं 5 साल से दीक्षा ले लिया, मुझे आता नहीं क्या? मुझे सब कुछ आता है। अब जब नहीं आता, यही तो प्रॉब्लम है ना, नहीं आता है इसलिए तो समस्या आ रही। जाओ किसी को जाकर पूछो उसमें प्रॉब्लम क्या है, पूछने में कौन सा अहंकार नष्ट हो जाएगा, उपाय पूछने में। दैट्स द प्रॉब्लम, बिकॉज व्हेन द प्रॉब्लम विद द कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द प्रॉब्लम विद अवर सेल्फ, इज नॉट विद द कृष्ण कॉन्शियसनेस। कल एक भक्त को मैं बता रहा था, घर में चोर घुस गया, इसलिए घुसा क्योंकि तुमने दरवाजे खुले रखे थे। चोर अपने आप तो आया नहीं, क्योंकि दरवाजे खुले रखे थे इसलिए घुस गया। That's the point. Yes. Yeah, हर एक व्यक्ति का, हर एक भक्त का नेचर अलग होता है, इसलिए आध्यात्मिक गुरु और जो वरिष्ठ भक्त होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं उसके नेचर के देख करके। अगर कोई कुछ पर्टिकुलर नेचर वाला व्यक्ति है तो उससे वो ऐसा कोई काम बताएंगे ही नहीं, ऐसा कोई सेवा बताएंगे नहीं। सो डॉक्टर हैज टू अंडरस्टैंड दैट, डॉक्टर इज गुरु एंड वैष्णव। डॉक्टर को देखना पड़ता है कि इनका नेचर कैसा है, इनकी वृत्ति कैसी है, इनको कौन सी सेवा अच्छी लगती है, इनको प्रसाद कुकिंग अच्छा लगता है तो इनको प्रसाद की सेवा में, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। तो इस तरह से वी हैव टू अंडरस्टैंड देम, डिफरेंट नेचर डिफरेंट गाइडेंस बट सेम गाइडेंस, विष्णु सूर्य सम माया अंधकार, सेम गाइडेंस। दैट इज द आइडिया। सो टेक्स्ट नंबर 69 ओके, गो अहेड।
महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रिया अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विलुप्त होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि भी संदेश की है।
उसके बाद वाला भी पढ़ लो, कनेक्टेड है 69 में।
जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयम के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षित होने के लिए रात्रि है।
तो ये स्पष्ट बता दिया यहाँ पर, सिद्ध प्रज्ञ वो व्यक्ति होता है कि जिसकी सारी इंद्रियां वश में होती है। ये महाबाहो, महाबाहो का अर्थ क्या होता है कि तुम क्षत्रियों का दमन करने वाले हो और तुम इंद्रियों से पराभूत कैसे हो सकते हो अर्जुन, तुम इंद्रियों को कैसे हार जाते हो? तुम क्षत्रिय हो, तुम शत्रुओं को खत्म करने वाले हो और तुम इंद्रियों से कैसे हार जाते हो? पॉसिबल विश्वनाथ चक्र ठाकुर से जिस दिन अपने मन को वश में लाओ अर्जुन, क्योंकि कैसे जो लोग या निशा सर्वभूतानाम, जो भक्तों के लिए जो रात्रि होती है या निशा सर्वभूतानाम, जो लोगों के लिए रात्रि होती है, सा निशा पश्यतो मुने या निशा सर्वतो सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, उसमें जो भक्त स्थित प्रज्ञ होता है संयमी, वो जागरण करता है या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। फिर या यस्याम जागृति भूतानी, यहाँ पर सब लोग जग रहे हैं, सा निशा पश्यतो मुने, उस चीज में भक्त का भक्त सो जाता है। तो इसमें आप इसका अर्थ क्या होता है कि हम आज से रात को 12 बजे से शुरू करेंगे क्या? आज रात से भक्त की रात्रि, अभक्तों का दिन होता है और अभक्तों का रात्रि हमारा दिन होता है, तो आज से रात्रि जागरण। नो, इसका अर्थ क्या है कि जिस कार्य के प्रति हमारा रुचि होता है उस कार्य के प्रति भौतिकवादी व्यक्ति जो होते हैं, जिसका संयमित नहीं होते लोग, उसमें उनका कोई जिसमें हमारा रुचि है उसमें उनका रुचि नहीं है, और जिसमें उनका रुचि है उसमें हमारा कोई रुचि नहीं है, कंप्लीटली डिफरेंट। या ये दिन रात का अंतर होता है, या हमेशा सरोप होता ना। तो एक अटैच पर्सन और डिटैच पर्सन, वो भी आप समझ सकते हो, आसक्त व्यक्ति और अनासक्त व्यक्ति। आसक्त व्यक्ति का जो रात्रि होता है, अनासक्त व्यक्ति का वो दिन होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कई बार आप सुबह 4:30 बजे मंगला में आते हो 3-3:30 बजे, तो उस समय क्या होता है कि रात को घूमने वाले जो निशाचर होते हैं, है ना, जो पार्टीज वाले, तो पार्टीज वाले अपने अपने घर सोने के लिए जा रहे होते हैं और आप लोग उठ करके मंगला में आ रहे हो। समटाइम इट हैपेंस, तो आपको लगता है हाँ देखो यार निशाचर होता ना, उसने बताया ना, जैसे आप जन्माष्टमी आएगी तो जन्माष्टमी क्या होगा कि आप लोग रात को 1:30-2 बजे यहाँ से जाओगे सोने के लिए और वहां पर पार्टी चल रही है, लोग वहां पर अभी तो अभी निकले बाहर घूमने के लिए। दिस इज कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट, क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य उनका उद्देश्य अलग, हमारा रुचि उनका रुचि अलग है, हमारा रस उनका रस अलग है। इसी तरह से जैसे जिसको हम सुख कहते हैं उसको वो लोग दुख मानते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं बेचारे भक्त लोग कितना दुखी होते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, और भक्त लोग क्या सोचते हैं कितने दुखी है ये लोग, ना कृष्ण भक्ति में जुड़ सकते हैं, ना मन की शांति प्राप्त हो रही। भक्त जो सही में सोच रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे को सोच रहे, दोनों ही दुखी है। वो सोचता है कि ये दुखी है और वो भक्त सोचता है कि ये दुखी है, इसको लगता है कि इसको कुछ भोग करने को नहीं मिल रहा है, और यह भक्त लोग सोचता है कि इसको भक्ति प्राप्त नहीं हो रही है, तो दोनों ही दुखी है एक दूसरे के प्रति, बिकॉज बोथ हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन, टोटली डिफरेंट, उनका सोचने का तरीका ही अलग होता है। तो इस तरह से उनका सुख का साधन भी अलग होता है। जैसे डिसीज्ड कोई होता है कंडीशन में, रोग की अवस्था में होता है, तो रोग में क्या होता है कि आपको कड़वा लगता है खाना, कोई रुचि नहीं आती, इसन्ट इट। अगर आपको आजकल तो मैंने नोटिस किया, पहले तो ऐसे बुक में पढ़ते थे कि जॉन्डिस होता है तो आपको जो भी खाओगे वो कड़वा लगता है, विशेष करके जो मीठा होता है वो कड़वा लगता है, लेकिन आजकल तो मैंने नोटिस किया कि जब भी दवाई लेते हो, इंजेक्शन लेते हो या हॉस्पिटल में आपको एडमिट करते हैं, आजकल तो बता रहे हॉस्पिटल का अर्थ क्या है, जाते सीधा इंजेक्शन डाल देते हैं, इज इट। अब जैसे हॉस्पिटल में जाए तो सीधा स्वीट ठोक देते हैं, सबसे पहला काम यही होता है हॉस्पिटल के अंदर, स्वीट ठोक देते हैं और फिर उसमें आपको दवाइयां वगैरह। 5 मिनट पहले आपको सब कुछ अच्छा लगता था प्रसाद में, कोई भी अच्छा है, लेकिन उस जैसे अस्पताल के अंदर गए फिर आपको वही आइटम जो आपको बहुत अच्छी लगती है वो आपको देते हैं, तो फिर कोई रुचि नहीं, इच्छा ही नहीं हो रही है खाने की, क्यों? क्योंकि हम रोग अवस्था में पहुंच जाते हैं, जॉन्डिस में रोगी अवस्था होती है। तो इसलिए कृष्ण भक्ति में 4:30 बजे उठना, 4:30 आधी रात को, वो ऐसा बोलते बोले प्रभुपाद ने आधी रात को उठा दिया सबको, कुछ बोला है किसी लोग को, मुझे आकर पूछते मंगला का टाइम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है, बोला है मंदिर में बहुत जल्दी आपकी मंगला होती है। हमारे एक भक्त थे अहमदाबाद में, यू वॉज जस्ट फन लविंग थे, उनको बड़ा अच्छा लगा, यू वॉज ऑलवेज जॉली। वो भक्त उसने छोड़ दिया उन्होंने, तो वो भक्त बोले कि एक बार मैंने गुरु जी के सेक्रेटरी को पूछा था कि नया मैं था, तो क्या हुआ कि मेरा कीर्तन करते करते मेरी धोती निकल गई मायापुर में राधा माधव के सामने, तो कीर्तन कर रहा था, कीर्तन करते करते मेरी धोती निकल गई और धोती वापस लगा दिया, फिर वापस उसी थोड़ी देर के बाद मैं गंगा स्नान के लिए गया, गंगा स्नान में गया तो वहां पर भी बड़ी मुश्किल से धोती संभाली थी और बार बार निकल रही, तो मैं तो पूछ ही डाला, क्या पूछा, बोले धोती का इन्वेंशन किसने किया है। ऑफ कोर्स ही वाज मेकिंग फन, जोक कर रहे थे, लेकिन कहने का तात्पर्य कि जो भक्त होते हैं उनको ये सब चीज के प्रति कोई दे आर ओके विद दिस 4:30 बजे मंगला आरती वगैरह, लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति वो समझ नहीं पाते है, ठीक है, माला पूरी 16 माला नहीं हो पाती, होता है ना ऐसा, नहीं हो पा रही, अच्छे से नहीं हो पा रही है, बिकॉज वी आर डिसीज कंडीशन, रोग अवस्था में। कृष्ण कथा में अगर हमारा मन इधर उधर ना भटके तो आप यू नो यू आर द लकी स्पीकर। अगर आपके ऑडियंस में कृष्ण भावना भागवत क्लास में अगर कोई आपका एक ध्यान से सब सुन रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है कि आप बहुत बड़े भाग्यशाली वक्ता हो कि आपके ऑडियंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हमेशा श्रीमद् भागवतम में एक तो ऐसा होगा ही कि वो इधर देखता है उधर देखता है, ये करता है वो करता है, इधर होगा एक तो मिलेगा ही ऐसा। सो दिस इज बिकॉज ऑफ नो टेस्ट, कोई स्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है, इसके कारण ये सब हो रहा है। प्रभुपाद सेड डॉक्टर व्हेन दे गिव मेडिसिन दे से फॉलो दिस डाइट। तो हमारा प्रॉब्लम है कि हम दवाई लेते हैं लेकिन डाइट फॉलो नहीं करना है। इफ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फिजिशियन, इफ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फिजिशियन देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके सो टेक्स्ट नंबर पढ़िए।
जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह में विघटित नहीं होता है होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो।
यस, यहाँ पर कहा समुद्र का एग्जाम्पल दिया गया है। समुद्र में नदियों का फ्लो मॉनसून में, आज गुजरात में तो सभी नदियों का फ्लो बढ़ गया है। कल ही मेरे मदर पूछ रहे थे, वो फोटो देखा उन्होंने कि किसी का कहीं पर बाढ़ आई है कहीं पर ये हुआ, तो फोटो देखा तो मुझे बोले कि इतना सारा पानी भगवान ने भेजा ये आपका समर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, समर के समय में तो उसको सॉल्व करने के लिए इतना सारा पानी भेजा, लेकिन ये सारा पानी कहाँ जाएगा?
समुद्र में।
क्योंकि हमारे पास सिस्टम ही नहीं है कि पानी को हम सेव कर पाए, तो पूरा पानी समुद्र में चला जाएगा। तो ये समुद्र में इतना सारा पानी अचानक से जाता है लेकिन समुद्र ओवरफ्लो क्यों नहीं होता है? समुद्र का लेवल ऊपर नहीं आता है? दैट इज द एग्जाम्पल। क्योंकि हमारे हृदय में अनेक 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 इच्छाएं हो सकती है लेकिन जो स्थिर बुद्धि वाला भक्त होता है उसका समुद्र ओवरफ्लो नहीं होता है। तो इतनी सारी इच्छाएं होती है फिर भी उसको कुछ नहीं होता, वो प्रभावित नहीं होता इससे। इसलिए इस कैसे एक बार प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक कर रहे थे सैन फ्रांसिस्को में शायद, तो प्रभुपाद वॉक कर रहे थे और करते 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 समुद्र के पास आए, खड़े रहे और समुद्र के पास आकर कहा, उस समय समुद्र बहुत शांत पीसफुल एकदम शांत, देखा आपने ऐसा कोई समुद्र? एकदम शांत समुद्र। जगन्नाथपुरी का जो समुद्र होता है ना वो बहुत आवाज करता है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है एकदम शांत समुद्र। गंगा सागर बिल्कुल शांत, कुछ प्रभाव नहीं एकदम से। तो प्रभुपाद ने उनको पूछा शिष्य को, तुम जानते हो ये समुद्र इतना शांत क्यों है? लोग सोचने लगे तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ये इसलिए ये शांत है क्योंकि ये डीप है, ये गहरा है इसलिए शांत है। क्योंकि जो भक्त कृष्ण भावनामृत में जो गहराई गहरे है डीप होते हैं, जिसको डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसे कितनी भी नदियां आ जाए कितनी भी सुनामी आ जाए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्टेडी ऑलवेज, जिस वृक्ष के मूल डिप रूटेड होते हैं वो वृक्ष गिर सकता है क्या? जिसके वृक्ष कमजोर मूल कमजोर होते हैं वो गिर जाता है। तो ये जो कृष्ण भावनामृत में जो हमारा सैद्धांतिक ज्ञान है, ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर हमारा मूल जो है वो गहराई से लगा नहीं है तो हम छोटी सी हलचल हो जाएगी, छोटा सा कुछ परिवर्तन आएगा, हम तुरंत प्रवोक हो जाएंगे, ना उखड़ पड़ेंगे सीधा, तुरंत हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, जिसकी एकमात्र इच्छा है कि कृष्ण भाव, कृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कोई उसकी इच्छा नहीं है, और जो कृष्ण की महत्ता को समझता है, कृष्ण भक्ति के सिद्धांत को और विज्ञान को जानता है, उसको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसको। क्यों? जैसे हम छोटी मोटी समस्या के लिए परेशान हो जाते, अब जब आपके गुरुजनों के पास कैसी समस्या आती है आपको पता है, बहुत बड़ी बड़ी समस्या आती है। उस समस्या का अगर आपको एक एक ग्लिम्स भी दिखा दिया जाए ना, डेमो वर्जन, और उसको दिखा दिया जाए ना, तो आप ऐसे ही बेहोश हो जाओगे। अरे बाप रे, ये भक्त ऐसा किया, अरे वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा सब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण भावनामृत में अभी भी कमजोर है, हमें नहीं पता कि कृष्ण भावनामृत का असली महिमा क्या है। अर्थात जो कृष्ण भक्ति में स्थिर होते हैं, वो स्थिर रहते हैं हमेशा हर एक वस्तुओं से, विशेष करके अपनी भौतिक इच्छाओं से वो प्रभावित नहीं होते, अपनी भौतिक इच्छाओं से प्रभावित नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि वो स्थिर होते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, आप समझ लो कि आप बड़े हो, आप गृहस्थ हो, शादीशुदा हो, आपके अपने भी बेटे बेटियां हैं, अभी आपके सामने अगर कोई टॉफी लेके आएगा तो आप प्रभावित होगे? छोटे बच्चे के सामने अगर आप टॉफी देते हो तो बहुत खुश हो जाता है ना, आपको वो ले लो मैं तुम्हें एक टॉफी दूंगा, तो प्रभावित होंगे आप? नहीं। अगर समझ लो कि आपके सामने दो लड्डू पड़े हैं आपके प्लेट में, आप खाने वाले हो, और आपका बेटा आकर, आपकी बेटी या बेटा कोई आके कहता है, नहीं पिताजी मैं और एक लड्डू खाना चाहता, तो आपसे इससे कुछ फर्क पड़ता? हाँ भाई, तू दो ही खा ले, दो ही तू खा ले, isn't it? कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस समय उनके वो इच्छाओं उनको प्रभावित नहीं कर पा रही है। इस तरह से भक्ति में जो परिपक्व हुए हैं, उनको इच्छाओं का जो सुनामी होता है, तूफान आता है, वो उनको परेशान नहीं कर सकते। They can remain steady. So we should try to deal with our desires. How to deal with our desires? That we should try to learn. इच्छाओं के साथ किस तरह से डील करना हमें, वो हमें सीखने का प्रयास करना है। और हमारे जो मूल है कृष्ण भक्ति के, उसको फैलाओ, डीप रूटेड वो करो। आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे चलेगा, ऊपर की साइड, नीचे की साइड पहले बढ़ लो। ऊपर की साइड तो बढ़ने ही वाला है जिसका मूल फैला हुआ है। तो नेक्स्ट श्लोक इसके कंटिन्यूएशन में है, पढ़िए। या
मूल,
अच्छा हाँ, अच्छा प्रश्न है, ये मूल हमारे विकसित करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत को शास्त्रों के और वक्तों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करो, सिद्धांत को। सिद्धांत बोलिया चित्त ना कर आलस, कृष्ण भावनामृत के जो सिद्धांत है उसको जब सुनने की बारी आती है उस समय आलस नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आपको हजार बार कहा जाए कि प्रभु ये सीखो, ये सीखो, ये सीखो, ये सिद्धांत है इसको सीखो, उसमें आलस नहीं होनी चाहिए। हमेशा जब सिद्धांत की बात है तो कान खुले हो जाए, स्टडी माइंड, प्रॉपर लिसनिंग। एक बार जो ना विष्णा प्रभु मुझे बता रहे थे, जस्ट ये आपके लिए एक हिंट भी है, कुछ 6 महीने पहले मुझे बताया, भक्ति शास्त्री कोर्स करने के पश्चात हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करें? जो भक्तों ने भक्ति शास्त्री कोर्स किया है, क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या उनसे क्या आशा रखें उनसे? What kind of expectation we should have? मैंने कहा कि ऑन पेपर एक्सपेक्टेशन का लिस्ट तो है मेरे पास, ऑन पेपर क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उस आचरण को प्रस्तुत करने में अगर विफल हो जाते हैं तो ये क्या हुआ? आपने सुना भी है, पढ़ा भी है, पेपर दिया, एग्जाम दिया, सब कुछ किया, लेकिन व्हाट इज दिस, व्हाई वी कुड नॉट चेंज अवर बिहेवियर, बिकॉज वी डिडंट हियर प्रॉपरली. सिद्धांत तो बोलिया, जब सिद्धांत की बात हुई उसको हमने सीरियसली नहीं लिया, वी डिडंट हियर इट प्रॉपरली. यहाँ हो तो कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस. अगर सिद्धांत की बात को आप ध्यान से समझ लोगे तो इसके माध्यम से सुदृढ़ मानस, कृष्ण भक्ति में आपका मन जो होगा वो सुदृढ़ हो जाएगा. जैसे वृक्ष मूल डीप चले जाते हैं, सुदृढ़ हो जाएगा, फिर उसको कुछ नहीं होगा, उसका नो प्रॉब्लम. कई बार हम लोग कहते हैं प्रभु जी वहां पर तो वो भक्त है, वो सिचुएशन को अच्छा, वोट यू वोट ये, मैं उसको जानता हूँ, कुछ नहीं होने वाला, फॉरगेट इट, अभी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पहुंचा हुआ है, उसको सब जानता है, वो कृष्ण भक्ति के सिद्धांत को जानता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. व्हाई? बिकॉज वी हैव कॉन्फिडेंट दैट दिस पर्सन नोज कृष्ण भक्ति, ही विल नॉट बी डिस्टर्ब, उसको कुछ नहीं होने वाला, वो परेशान नहीं होगा. यस, समबडी वाज सेइंग समथिंग. ओके, सो टेक्स्ट नंबर 71. तो जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति की सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया है, इच्छाओं से रहित होकर के जो जो जी रहे हैं, वो केवल वही एकमात्र व्यक्ति है शांति को प्राप्त कर सकता है. ये शांति शांति का एक सूत्र भी है यहाँ पर, ये शांति सूत्र ऐसे पांचवें अध्याय में भी ये आता है, पांचवें अध्याय में भी ये सूत्र है शांति कैसे प्राप्त होती है. प्रियव्रत महाराज इज अ गुड एग्जाम्पल. यस, माइक हट गया ना, माइक अभी आएंगे ठीक करेंगे. हाँ, हरे कृष्णा. शांति कैसे प्राप्त होती है? तो शांति उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है कि जो स्थिर बुद्धि वाला होता है. जैसे प्रियव्रत महाराज का एग्जाम्पल श्रीमद् भागवत में, उनको सब प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य होने के उपरांत भी बिल्कुल विरक्त थे, कोई प्रभाव नहीं था, कोई प्रभाव, कुछ फर्क, सब ऐश्वर्य थे, सब कुछ था उनके पास, लेकिन फिर भी उनका कोई प्रभाव नहीं था. नॉट इन रियल, जैसे अगर हमें, हम तो छोटी बात को लेकर पड़े, छोटी छोटी चीज को लेकर के. यहाँ पर इनके प्रसाद में 6 आइटम है और उस प्रसाद में 7 आइटम है, वहां पर एक स्वीट ज्यादा है, तो हम उससे आकर्षित हो जाते हैं. नो, अगेन, प्रसाद खाने में कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अगर उसको न्यूट्रल होकर के देखा जाए, न्यूट्रल होकर के देखा जाए, तो भक्त के लिए वो 6 आइटम या 7 आइटम हो या 70 आइटम हो, उसके लिए सब एक ही है. इज नॉट इंटरेस्टेड, इज ए स्मॉल ऑपुलेंस. जैसे जो सन्यासी लोग होते हैं, गुरुजन विशेष करके, तो उनको किसी भक्त के घर जाते तो पूरा अन्नकूट भर देते, टेबल पूरा पूरा भर दिया होता है, सारा अन्नकूट भर दिया, और कभी वही 2-3 आइटम खा लेते, और देम इज ऑल सेम, उनके लिए सब समान है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, तो पूरा भर के दोगे या कुछ. तो उन भक्त जो स्थिर बुद्धि वाले होते हैं उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि प्रसाद में आज 4 आइटम ज्यादा है या 4 आइटम कम है, यू नो, डजंट मेक अ डिफरेंस. मैं फर्स्ट फ्लोर पर रूम दिया, सेकंड फ्लोर पर, क्या फर्क पड़ता है, आपको सोने से काम है ना, ना इसमें ये सुविधा क्यों नहीं मिली. तो हम ये ऑपुलेंस के सामने गिर जाते हैं, क्यों? क्योंकि बुद्धि स्थिर नहीं है, हायर टेस्ट नहीं है, इसके कारण ये सब हो रहा है. छोटी छोटी बात में यहाँ पर मुझे 500 रुपए प्राप्त हो रहा है, तो ये अरे भाई क्या पैसा है, तो पैसा ही सब कुछ होता तो लोग आज प्रसन्न नहीं होते, सब कुछ नहीं समझ पाते, पैसे के पीछे भागते. सो और एक चीज, जस्ट अ गुड फॉर्मूला, जिस भक्त का एक इच्छा अगर प्रबल हो जाए, कृष्ण भक्ति, किसी को देने की इच्छा, अगर आप किसी को कृष्णा देते हो उसकी अगर आपको इच्छा एक बार प्रबल हो गई ना, तो बाकी सारी इच्छाओं को यही एकमात्र इच्छा सबको बहा के ले जाएगा। ऑल अदर डिजायर्स, जितनी भी इच्छा है सब बह जाएगी प्रचार की इच्छा से। अगर आप प्रचार की भावना को स्थिर कर सकते हो, प्रचार की इच्छा को स्ट्रांग बना सकते हो, तो बाकी सारी इच्छाएं जो है वो अपने आप कमजोर हो जाएगी। इसलिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास इच्छाओं की कमी, हमारे पास अच्छी इच्छा नहीं है, वही पुरानी घिसी पिटी इच्छाओं को लेकर घूम रहे हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है कृष्ण के। सो द फॉर समरी ऑफ द एंटायर चैप्टर टेक्स्ट नंबर 72 पढ़िए। यहाँ पर भगवान स्थिर बुद्धि की बात किया और विशेष करके अंत में मृत्यु के समय पे अगर कोई इस तरह से स्थिर रह पाता है तो भगवत धाम पहुंच जाएगा। इसलिए इसको समरी बोलते हैं, यू नो एंटायरली कृष्णा इज गिविंग द एंटायर थिंग्स इन दिस। तो यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत सारी बात बताई है, कर्मयोग, कर्मकांड, ज्ञान, सांख्य, फिर बुद्धि योग, वेदांत, आत्मा, अनासक्ति, निष्काम कर्म, संन्यास, भक्ति योग, समाधि, ये सारे विषयों की चर्चा हुई है किसके अंदर, सेकेंड चैप्टर के अंदर। इसलिए इसको समरी बताया गया। प्रभुपाद राइट्स, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर हैज समराइज्ड दिस सेकेंड चैप्टर ऑफ द भगवद गीता एज बीइंग द कंटेंट्स फॉर द होल टेक्स्ट। In Bhagavad Gita, the subject matters are Karma Yoga, Gnana Yoga, and Bhakti Yoga. In the second chapter, Karma Yoga and Gnana Yoga have been clearly discussed, and a glimpse of Bhakti Yoga also has been given as a content of for the complete text. अर्थात सारी भगवत गीता का जो महत्वपूर्ण विषय है, वो सारे विषय का एक-एक अंश second chapter में पूरा दिया हुआ है। So, this ends here, text number 2, chapter 2. You know, it is very simple to understand. What happened? Who is that? Oh yes, somebody has fallen from upar se gira. Can you pause the recording? No. What is all your fault? लेकिन ये अच्छा बात है, आपका विचार ऐसा है, लेकिन जरूर नहीं कि सब ऐसा ही उत्तर देंगे, क्योंकि अभी कुछ समय पहले एक भक्त मुझसे बात कर रहे थे तो इसी विषय में बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि क्या करने का अगर मैं प्रचार नहीं कर सकता आई जस्ट सेड व्हाट इज द यूज ऑफ लाइफ, तो बोले कोई बात नहीं, भगवत धाम, यू नो भगवत धाम अल्टीमेटली तो भगवत धाम ही जाना है ना। तो देन आई सेड, हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रभुपाद इस विषय को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किए थे, भगवत धाम जाना, अर्थात भगवत धाम जाना दैट्स फाइन, दैट्स नॉट द रियल गोल। रियल गोल हमारा क्या है, मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतात् भक्तिर, ये हमारी इच्छा है, प्रचार प्रचार हमारी इच्छा है। तो प्रभुपाद ने उसका उत्तर दिया था उस भक्त को, जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहा है ही इज ऑलरेडी बैक होम बैक टू गॉड। प्रभुपाद ने जो प्रचार कर रहा है वो अब पहले से ही भगवत धाम वापिस है, वो यहां पर कार्य कर रहा है लेकिन वो भगवान के धाम में रहता है। इहा यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्वाप्य अवस्थासु द्विन्मुक्तस्य उच्यते। तो किसी भक्त ने आगे प्रश्न पूछा, तो फिर वो मुक्त हो जाता है तो क्या उसको शरीर त्याग करना पड़ता है, प्रचार करता है तो उसका मृत्यु जल्दी आ जाता है, तो क्या उसको मुक्ति मिल जाती है? क्या होता है वो उसका शरीर? प्रभुपाद ने कहा कि शरीर क्यों छोड़ना पड़ेगा, क्यों शरीर छोड़ना पड़ेगा? इसी शरीर में अंदर वो मुक्त हो जाता है, इसी शरीर में। कैसे? जैसे एक लोहे का जो रॉड होता है उसको अग्नि के साथ रखोगे तो क्या होगा, फिर धीरे 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 वो भी अग्निमय बन जाएगा। इस तरह से भक्त जो होता है निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहता है, उसका सारे कार्य उसके कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत होते हैं, इसलिए वो अग्नि के साथ रहता है हमेशा। और इसके कारण अग्नि के साथ रहने के कारण वो भी अग्निमय बन जाता है, कृष्णमय बन जाता है। सो दैट इज द की फॉर स्पिरिचुअल सक्सेस। सो नाउ ओके, सो वी हैव यस सांख्य। सांख्य का मूल जो भगवद गीता के सेकंड चैप्टर में बताया है वो शरीर और आत्मा के अंतर को सांख्य के रूप में बताया है। जो आत्मा शरीर का अंतर है कौन से श्लोक में है वो? टेक्स्ट नंबर अधिकतर 11 से 20 तक या 30 तक, राइट? शरीर और आत्मा के अंतर को डिस्क्राइब किया हुआ है। नाउ टेक्स्ट नंबर चैप्टर 2 जो है उसमें बहुत सारी एग्जाम्पल है। लेकिन हमको फर्स्ट चैप्टर जब हमने कंप्लीट किया था उस समय हमने आपको एक बात बताई थी कि सभी भक्त कृपा करके चैप्टर के दौरान जितने भी एग्जाम्पल आते हो उस एग्जाम्पल्स का एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। रिमेम्बर दैट, ऐसी बात हो गई थी। पोर्टफोलियो बना सकते हो और द पॉइंट बिहाइंड ऑल दैट इज कि ट्रांसलेशन और अपने लिए तो आप डिस्कशन में होते हैं या हमारे जो हमने जो बात बताई हो यहाँ पर उसमें से कोई भी एग्जाम्पल जो आपको मैच हो रहा है, आपको सूट कर रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको आप उसको यूज करना चाहो तो कर सकते हो। यू शुड ट्राई टू लिस्ट आउट एंड लाइक तो पहला जो चैप्टर था उसके एग्जाम्पल का लिस्ट हमने आपको बताया था कि इसमें ये एग्जाम्पल है, उसमें वो एग्जाम्पल है। तो जस्ट टू गेट ट्यून विथ मैं आपको सेकेंड चैप्टर का एग्जाम्पल का लिस्ट भी दे सकता हूँ, लेकिन थर्ड चैप्टर से फिर आप खुद करेंगे, राइट? सेकेंड चैप्टर का उसके एग्जाम्पल का लिस्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसी के ऊपर हम छोटा सा एक्सरसाइज भी करेंगे एग्जाम्पल को लेकर के। प्रभुपाद ट्रांसलेशन में तात्पर्य में भगवान ट्रांसलेशन में कुछ भी बता रहे हैं कि किसी चीज को बताने के लिए कोई एग्जाम्पल या एनालॉजी यूज किया गया, तुलना कि जैसे बोर्ड का एग्जाम्पल दिया भगवान ने अभी, समुद्र का एग्जाम्पल दिया जैसे समुद्र स्थिर होता है, राइट? कछुआ टॉर्टोइस का एग्जाम्पल है, राइट? तो इस तरह से अलग अलग जो एग्जाम्पल चैप्टर के द्वारा पूरा यूज हुआ है उसको हमें लिस्ट बनाना चाहिए। ओके, जस्ट उनको उसको ले जा रहे जो आदमी गिर गए उनको ले जा रहे, सो डोंट बी पैनिक। टेक्स्ट नंबर 2.1 में 2.1 आप जान रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो 2.1 में है ड्रेस ऑफ अ ड्रॉनिंग मैन, डूबते हुए व्यक्ति के वस्त्र, डूबते हुए व्यक्ति के वस्त्र उसका एग्जाम्पल है। सेकेंड टेक्स्ट नंबर 2 में सूर्य का उदाहरण, सूर्य सातवें श्लोक में फॉरेस्ट फायर अर्थात वन की आग, उसमें एग्जाम्पल है। या वही फिर बाला टेक्स्ट नंबर 12 इसमें मधुमक्खी इसे मक्खी 12 टेक्स्ट नंबर 12 मक्खी का है या हनी का एग्जाम्पल है हनी वाला हनी बॉटल इसमें एग्जाम्पल है। टेक्स्ट नंबर 13 में आकाश का एग्जाम्पल है आसमान। टेक्स्ट नंबर 14 उसमें सीजन का एग्जाम्पल है सीजन ऋतुओं का। टेक्स्ट नंबर 17 सनशाइन सूर्य की किरण उसका एग्जाम्पल है। अठारह में सूर्य प्रकाश का उदाहरण है। बीस में आसमान का एग्जाम्पल है आसमान स्काई। 22 में वस्त्र का एग्जाम्पल है। 23 में अग्नि का एग्जाम्पल है। 25 में माता का एग्जाम्पल है। 28 में स्वप्न का एग्जाम्पल है स्वप्न
28
ड्रीम 28 ड्रीम स्वप्न। 41 में वृक्ष का एग्जाम्पल है। 42-43 में फूलों का एग्जाम्पल है फ्लावर्स। 46 कुएं का एग्जाम्पल है कुआ। 51 में बछड़े का एग्जाम्पल है वो श्लोक जो है वो समाश्रिता ये पदपल्लव अप्लवम तात्पर्य में है। 51 52 में डेंस फॉरेस्ट घन वो डेंस फॉरेस्ट घनावन। 52 डेंस फॉरेस्ट घनावन क्या बोलते हैं उसको बीच जंगल
गनगोर जंगल
सॉरी गुजराती में बताना चाहिए था। 54 धनवान व्यक्ति। 58 जहरीले सांप पॉइजनियस स्नेक्स सर्पेंट्स। 59. Bardi, Marij, patient. Bardi, Marij. 58 में सांप का एग्जाम्पल है और वो भी है टॉर्टोइस का किस में है 58 यस टॉर्टोइस का भी है टॉर्टोइस एंड स्नेक दो दो 59 में एक मरीज का एग्जाम्पल है 60 में भूखे व्यक्ति का एग्जाम्पल है भूखा व्यक्ति ये है 61 में ब्लेजिंग फायर अर्थात जलती अग्नि 67 बोट नौका 68 शत्रु 69 दिन और रात 70 में नदियां 3 words. Okay, so now we have a small exercise. आप बताइए क्या यूज कर सकते हैं यस फिर और पिचिंग के लिए चाहिए और
नोट बनाने के लिए
आप अगर नोट्स बना रहे हो उसके लिए चाहिए फिर अगर आप वही बात जो सिद्धांत की बात है कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो कंसेप्ट को अच्छे से समझ रहे इसलिए भगवान एग्जाम्पल दे रहे क्योंकि किसी कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल से अगर उसको समझा जाए तो बड़ा आसान हो जाता है समझना इसलिए भगवान इसको समझा रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से प्रभुपाद बार बार एग्जाम्पल दे रहे हैं अलग 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 वस्तुओं को उसको अच्छे ढंग से समझने के लिए आवश्यक होता है और उसी तरह से अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए भी आवश्यक होता है अगर समझ लो कि एग्जाम्पल के बिना बताई जाए बात तो आप इसको शायद पूरी तरह से ना भी समझ पाओ लेकिन एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का यह फायदा होता है विचार में काम आता है समझने में काम आता है समझाने में काम आता है सो देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ लिस्ट ऑफ एनालॉजीज अभी आएगा देखो वही काम करना है आपको सो वी हैव नाउ 4 ग्रुप्स हम देते हैं गोकिला माता जी आप माताओं में 2 ग्रुप बनाइए और केशवचंद्र प्रभु केशवचंद्र राइट तो आप प्रभुस में 2 ग्रुप बनाइए अचिंत्य प्रभु यू कैन हेल्प हिम एंड अमल सीता माता यू कैन ऑल्सो हेल्प हिम